अगर मैं और आप वाकई ईमान का दावा करते हैं ना, तो हमें दूसरों के लिए भी उसी खूबसूरत दीन की और उसी किताब के ताल्लुक की दुआ करनी चाहिए जो अल्लाह ने हमें आपको अता किया हो। अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा इस किताब के लिए लगाएं, तो इसमें तो किसी को शक नहीं है ना। आप देखते हैं कि कुरान हकीकत में गैर महसूस तरीके से आपकी जुबान पे आ जाएगा। सोते जागते उठते बैठते आयतें याद आ जाएंगी। बाज दफा शुरू में आपको लगेगा मुझे नहीं याद किधर है, कहाँ है ये बात हुई, लेकिन आपको वो बात याद रह जाएगी। जैसे आप कभी कहते पता नहीं इसको कहाँ देखा है, फिर बाद में थोड़ी देर बैठे कहते हाँ वो फलां शादी पे मिला था ये शख्स, या फलां के घर में, अच्छा ये फलां की बेटी है, वो फलां की है। इसके लिए टाइम लगाना पड़ता है। और मेरी नजर में ईमान की मिठास का दूसरा नाम कुरान की बहार है। आपके दिल में ये कुरान ऐसे घर कर जाए जैसे आपको समझ आती है अपने बच्चे की बात। लोग कहते हैं कि माँ तो गूंगे बच्चे की भी बात समझ जाती है ना। आप देखिए कि मोहब्बत जुबान के फासलों को खत्म कर देती है। लैंग्वेज के डिफरेंस के बगैर भी मैंने देखे शौहर बीवी डिफरेंट कल्चर से हैं, लेकिन वो मोहब्बत की जुबान होती है, वो एक दूसरे के इशारे भी समझ जाते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी संजीदगी की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं, और अल्लाह ताला हम सब के इस जानने में बरकत भी दे कि रमजान का महीना करीब है, जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ था। रमजान के साथ कुरान का इतना गहरा ताल्लुक है जैसे आप कहते हैं रोटी के साथ सालन का। जैसे आप देखिए कि कोई चीज दूसरे के बगैर अधूरी है ना। कुर्सी है मेज नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं है। मेज है कुर्सी कोई नहीं, क्या करेंगे। जूते का एक पाँव है दूसरा कोई नहीं, एक पाँव की जुराब है दूसरी नहीं है। साथ साथ ये चीजें चलती हैं। बिल्कुल इसी तरह रमजान के साथ कुरान का मौका है। अब आप अपने आप से चंद सवाल करें, मुझे इजाजत दें तो मैं भी आपसे पूछ लूं कि आप अमूमन रमजान में कुरान पाक के साथ किस किस्म का ताल्लुक रखते हैं। मसलन मैंने अक्सर साथियों को देखा है कि माशाल्लाह वो बहुत तेजी से कुरान पढ़ते हैं ना, 5 सवारे पढ़ते हैं। कितने लोग एक दिन में 5 सवारे पढ़ लेते हैं, वो हाथ खड़ा करें। आप पढ़ सकती हैं, पढ़ती हैं, आप भी पढ़ लेते हैं माशाल्लाह। 4 सपारे, 3 सपारे, 2 सपारे और 1 सपारा, ये तो सारे ही पढ़ लेते हैं, एक तो सारे ही पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सआदत है, ये बहुत बड़ी सआदत है कि आप 1 सपारा पढ़ें। आप कभी बैठ के गिने, अब इसका कोई वजीफा ना बना ले। मैं तो बात करते ही डरती हूँ कि मैं कोई बात किसी के रेफरेंस में भी सुनाऊ ना तो बाद में लोग कहते हैं वो कौन सी दुआ थी जो बच्चे के पैदा होने के वक्त पे पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदो नहीं पढ़ते कोई दुआ। देखिए कि हमारा कल्चर क्या बन गया, हर चीज के अंदर हम अपने आप को इस तरह इन्वॉल्व कर लेते हैं कि जैसे बस इसको इतनी दफा पढ़ें तो इससे ये फायदा होगा। ऐसे ही अभी आज सुबह मैं आपके इस लेक्चर के लिए कुछ चीजें ढूंढ रही थी, तो मैंने पता नहीं क्या लिखा, कुरान से ताल्लुक या किस किस्म की कोई बात लिखी। यकीन करें ये खुल के आपको सुनाती हूँ। मैंने कहा कि देखूं जरा लोग क्या कर रहे हैं, तो मैंने कुरान की मोहब्बत लिख के गूगल में सर्च किया, और आपको पता मेरे सामने क्या क्या लिखा हुआ है। हुब बराए हुब, वजीफा मोहब्बत हासिल करने का। दूसरी स्लाइड है शौहर में मोहब्बत पैदा करना। फिर उसका तरीका सुन लें, अब अल्लाह के वास्ते इसको करने ना लग जाइएगा। ये मेरी सर्च नहीं है, ये गूगल की सर्च है। तरकीब बताइए अरूजे माह, यानी चांद जब जोश पे जा रहा होता है ना, उसकी 9 चंदी जुमे रात को शुरू होगा। बावजू अपने बिस्तर पर पढ़कर सो जाए, ख्वाब बिस्तर जमीन पर हो या चारपाई पर, दोनों सूरतों में पढ़ा जा सकता है। बिस्तर पाक होना चाहिए। और आयत कौन सी पढ़नी है, कद शगफहा हुब्बहा नाउज़ुबिल्लाह, तादाद 101 बार, अव्वल आखिर 11 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते। मतलूब का तसव्वुर करें, वो मतलूब चाहे कोई लड़का ही है किसी लड़की के लिए, मुझे मतलूब है बस। मैंने समझा शायद शोहर के लिए होगा, ये कह रहे हैं किसी लड़के से मोहब्बत करनी है तो ये वजीफा ले लें। आउज़ुबिल्लाह, किसी लड़की को फांसना है तो उसका तसव्वुर करें, इंशाल्लाह मतलूब बेकरार होकर हाजिर हो जाएगा 11 रोज में, वरना 21 रोज में इंशाल्लाह अल्लाह मकसद में कामयाबी देगा। और कहते हैं मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है, यानी इन्होंने भी किसी को भंसा होगा इस तरीके से। मुझे बताइए आप में से कितने लोग इस आयत के छोटे से टुकड़े को समझें कि ये कुरान पाक में किधर है। मैंने तो 2 3 लफ्ज पढ़े हैं तो मुझे तो पूरी सूरत याद आ गई है, कद शगफहा हुब्बहा। आपको पता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और अजीज मिस्र की बीवी और जो बाकी औरतें थी उनके किस्से की कहानी है। क्या कुरान इसलिए आया है? हम कितना बड़ा जुल्म करते हैं कुरान पाक को ना समझ कर। तो आप देखिए कि इस तरह के वजीफे जो हैं वो भी हैं। जब तक कि किसी का शौहर बदजुबान है, बेखलाक है, उसका भी वजीफा लिखा है, बताना है तो बाद में आ जाइएगा मेरे पास, हालांकि सही वजीफे भी हैं। अब आप बताइए कि जब कुरान को आपने इस तरीके से रख लिया तो आपको इसको समझने की क्या जरूरत है। आप फ्रांस में रहते हैं ना, फ्रांस का एक लॉ है, आप उसको मानते हैं या आप उसकी कॉपियां लेकर अपने घरों में लटका लेते हैं? आप में से कितनों ने एक फ्रांस के लॉज की कॉपियों को लटकाया हुआ है या उसको खूबसूरत थफों में लिखकर दीवारों पे चिपकाएं और ना आप टैक्स दें और ना गवर्नमेंट की कोई बात माने, और आप जो भी बात है आप कहते हैं देखे ना हम इस कानून से प्यार कितना करते हैं। बात तो सबको समझ आती है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इस साल के रमजान में हमने इस कुरान को अपनी तन्हाइयों का साथी बनाना। मुझे वो साथियों की बातें याद आ जाती हैं जो पहली दफा कुरान से जुड़ते हैं, जो उनके दिल की कैफियत होती है ना। वो मुझे एक स्टूडेंट की बात याद आ रही है, कहती है कि जब कोर्स शुरू किया तो इतनी आदत हो जाती है पारे को लेने और पढ़ने की कि बाद दफा बाथरूम में भी मुंह से लफ्ज निकल जाते हैं। आदत हो जाती है, अल्लाह माफ करेगा, कोई जान के थोड़ी करता। आप गाने सुने तो आपकी जुबान पे गाने आ जाएंगे, तिलावत सुनेंगे तिलावत आ जाएगी। वो लोग फीकी चाय पी रहे हैं जो कुरान को बगैर समझे पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए इस साल रमजान में कुरान पाक के तर्जमे का एहतमाम किया जा रहा है। कितने लोग इसके लिए मुंतजर हैं? सच सच बताइएगा, मुंतजर तो हैं, कितने लोग फायदा उठाने की नियत रखते हैं? वो हैंड रेस करें। सारे ही, अल्लाह आपके साथ औरों को भी लेकर आए। फिर एक और वजीफा मेरे सामने है, वो भी बाद में बता दूंगी, नाम अभी बता देती हूँ, शौहर का बीवी को घर से निकाल देना। आपको कुरान में से बड़े वजीफे मिलेंगे। एक और सुनिए, अगर औरत खावन के दरमियान नाराजगी हो जाए तो दोनों में से जो राजी करना चाहे वो रोजमर्रा 7 बार एक हफ्ते तक इस सूरत को बिला नागा पढ़े। मैं नाम नहीं बताऊंगी, इंशाल्लाह नाराज शुदा राजी हो जाएगा। इसका नक्श लिख कर जिस मकान की दीवार पर लटकाया जाए वो हर मुसीबत से महफूज रह जाएगा। ये मजाक नहीं है, ये कुरान इसलिए हम इसको फूल समझते हैं, हम इसका मजाक बनाते हैं। हम तो अपनी साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स उर्दू की किताब के साथ भी ये जुल्म नहीं करते। कभी आपका बच्चा सबक ना याद करे तो आप उसके सफ़े को फाड़ें और उसको कागज समेत पानी में डाल के पतीली में रखें, खूब उसको घोट घोट के पिला दें और कहें कि अब इसको याद हो गया होगा। एक बुजुर्ग की बात है, हमारे अपने खानदान के बुजुर्ग हैं, कहते हैं बड़े सीधे होते थे, तो बच्चे को स्कूल से लेने गए तो उनके मास्टर साहब ने कह दिया कि बाबा जी ये सबक बच्चे को कल पका के लाना है। पकाना कहते थे ना, पक्का करना, सबक पक्का करो। घर आए वो सफ़े निकाले, पानी में डाले, पतीली में पकने रख दिए, शाम तक वो पकता रहा कि ये पकाना है। तब आप मुझे बताइए कि क्या इससे बच्चा बन जाएगा? ये जितने माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या जितने माशाल्लाह मजहबी रहनुमा हैं, जो मुफ्ती हजरात हैं, जो हाफिज़े कुरान हैं, जो आलिम हैं, क्या वो इस तरह पका कर आए हैं? सोचिए ना। तो इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर इस दफा कुरान को समझना है। और आप देखिएगा कि ये आप आज का दिन लिख लें, ये वक्त ये जगह लिख लें। अगर आप में से किसी की अभी तक भी नियत नहीं बनी थी या आपको लगता है मुश्किल होगा, आज का वक्त ये घड़ी का टाइम देखकर लिख लें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू मेरे लिए रास्ते बना, मेरे लिए आसानियां कर, और मैं ये काम करना चाहती हूँ। गैब से आपकी मदद होगी। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने और आपने, हम मुसलमानों ने नहीं कुरान पढ़ना तो कौन पढ़ेगा? अगर हमारा इस कुरान से ताल्लुक नहीं जुड़ता तो क्या नॉन मुस्लिम्स का जुड़ेगा? क्या वो लोग जो कुरान के दुश्मन है क्या वो कुरान को पढ़े लिखेंगे? आप देखिए ना, एक डॉक्टर बनने का ख्वाहिशमंद मेडिकल की बुक्स नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? और आप देखिएगा कि जब इस किताब को हम अपनी जिंदगी में लाते हैं ना, हमारे जाती जिंदगी के मसले भी खत्म होते हैं। आज आप सब सोचें, कौन ऐसा जिसको कोई मसला नहीं, ना शौहर का, ना बच्चों का, ना घर का, कोई नहीं? मेरा लिए वो कोई होगा, और वो भी होगा भी तो उसको भी नहीं इसका एहसास होना, उसने वैसे खुद को कोई ना कोई नफसियाती मसला लगाया होगा। इस किताब के साथ जब आपका ताल्लुक जुड़ता है ना, इतना मजबूत गहरा ताल्लुक हो जाएगा आपको याद भी नहीं रहता। एक सिस्टर थी, किसी क्लास में थी तो वहां गई और टॉपिक उस दिन का जो था वो ये था कि माफ कर दो लोगों को, जो आपको सताए दुखी करे माफ कर दो, और ये वो सिला रहमी पे था। क्लास के एंड पे टीचर्स हमेशा डिस्कशन करती हैं, पूछती हैं बताएं भाई क्या सीखा, क्या पढ़ा, तो कहा आपने आज के सबक से क्या सीखा, डिस्कशन करें। तो उसने हाथ खड़ा किया, फिर उसने आके माइक पे सुनाया, कहने लगी आज सुबह घर से आने लगी थी तो शौहर से किसी बात पे झगड़ा हो गया। वो बोले मैं भी ना चुप हुई, इतनी बात भड़ी, इतनी भड़ी कि आखिर मैं गुस्से में से ये बात कह के घर से निकल आई, अब तो मैं जा रही हूँ क्लास में, शाम को आऊंगी तो आज खुल के बात होगी, आज फिर कुछ फैसला करते हैं। कहती आज क्लास में आई हूँ तो मुझे लगा सारा सबक ही मेरे लिए, और अब जाके क्या फैसला करना है और क्या खुल के बात होगी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें। ये किताब घरों के झगड़े खत्म करती है, ये किताब आपके घर में रहमत के फरिश्तों को लेकर आती है। एक दफा इस किताब से दोस्ती हो जाए, अपनी तन्हाइयों में इसको ले आए, आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो किताब, देखेंगे तो किताब, बोलेंगे तो किताब, लिखेंगे तो किताब। और ये आज के दौर का मुसलमानों के लिए चैलेंज है, क्योंकि जिस दौर में मुसलमानों ने इस किताब को छोड़ा, वो दुनिया में पत्तों की तरह बिखर गए। आप देखिए कि अरब क्या थे, बद्दू, चरवाहे थे, जूते नहीं पहनते थे, उनके कपड़ों में से पसीने की और बकरियों की बू आती थी। उस दौर में भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, रोम, ईरान और फारस और हबशा, बहुत सारे मुल्क थे। उस दौर में भी पैसा बहुत था, ये ना सोचिए कि उस दौर में सब कुछ गुर्बत पे था, नहीं, लोग इनको कुछ समझते ही नहीं थे। कहते बद्दू, ये ऐसी है जैसे एक पढ़ा लिखा शख्स जो अमेरिका में रहता है, वो पाकिस्तान के गांव में पलने वाले किसी जाहिल बद्दू को क्या समझेगा, उसकी क्या अहमियत है उसकी नजर में, वो कोई नसीहत दे करेगा तो वो कहेगा छोड़ो इसको क्या पता है। ये मुकाम था अरबों का, लेकिन जब ये किताब उन्होंने थामी, दुनिया के इमाम बन गए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद को कहा करते थे कि अबू हुरैरा तू क्या था, का कबीला दौस का गुलाम था, तेरी ये औकात थी कि लोग जहां चले तो उनसे आगे जाकर उनके लिए रास्ते बनाए, जहां उन्होंने पड़ाव डालना हो तो जाके उनकी सफाई करे, फिर जब वो उठ के वहां से चल पड़े तो तू उनकी बची खुची चीजें और उनके जानवरों का गंदगी उठाए, तेरी ये औकात थी। इस कुरान ने तुझे, इस इस्लाम ने, इस इल्म ने तुझे क्या बना दिया कि लोग तुझे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं। आज तक अगर आप कुरान का एक लफ्ज भी नहीं जानती, और आप दुनियावी भी नहीं पढ़ी हुई, ये भी मैं आपको साथ ही बता दूं, आज से खुद को चैलेंज दें, आप देखिएगा कुरान का दुनिया की तालीम से कोई ताल्लुक नहीं। पहला ग्रुप जो तैयार हुआ इस किताब को पढ़ने के बाद, वो उम्मीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना नाम भी नहीं लिखना जानते थे, आपको तो नहीं आता था अपना नाम लिखना पढ़ना, क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने बिल्कुल एक खाली जहन और एक साफ सुथरी जमीन पर एक पौधा लगाने की तरह तैयार किया था। आपने आज तक कुछ नहीं लिखा पढ़ा, कोई फिक्र ना करें। आप लोगों ने इंशा अल्लाह ताला पहले तो अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर। और अगर आप को लगता है कि मैं जॉब करती हूँ, कोशिश कर लीजिए चंद दिन की जॉब की छुट्टी ले लें, सारे दिन की छुट्टी ना लें, सिर्फ उतने टाइम की ले लें। अगर ये सब कुछ भी ना हो, आपको दूर से आना पड़े, 3 बसें बदलनी पड़े, 2 घंटे देर से हो, वहां जाएं खूब गर्मी हो और आपको कोई प्रोटोकॉल ना मिले, तो नहीं आएंगे, और आप वहां जाके बैठे तो छत टपकने लगे। याद रखिए एक बात, जहां से ये किताब आई है ना हम सबके पास, वो आज दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, लेकिन जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था ना, तो वहां सबसे खूबसूरत वो हस्तियां थी जो इसको ले रही थी। ना प्रोटोकॉल था, खाना काबा और मक्का इतना खूबसूरत नहीं था उस दौर में, और नीचे घास बिछा कर वो बैठते थे, और मदीना में मस्जिद नबी जो पहला स्कूल, जो पहला कुरान सिखाने का, इस्लाम सिखाने का इदारा बनता है, उसकी तो छत भी टपकती थी। आज अगर हम ये सोचते हैं ना कि मेरे लिए करीब हो, आसाइश हो और मेरी मर्जी की जगह हो, तो आप सब क्या सारे एक ही जगह से आए? ऐसा नहीं है ना। आप में से हर एक अगर ये कहते हैं मेरे घर के करीब हो, तो सबके तो एक करीब नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात यह है कि आप ये सोचते हैं कि जरूरत क्या जाने की। आप देखिए कि कुरान पाक की वो आयतें हैं, इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे मार्क करेंगे, बराह रास्त औरतों को मुखातिब किया अल्लाह ताला ने कि तुम इस कुरान की, इस किताब की आयतों का जिक्र करो, इसको जो तुम्हारे घरों में पढ़ जाती है इसके लिए चलो। नबी सल्लम की बीवियों से लेकर आपकी अजवाज मुतहरात जो सब थी और सहाबिया थी, उन्होंने इस किताब को अखज किया, जिनकी गोदों में बच्चे पलते हैं उन्होंने आगे नस्ल को देना है। अल्लाह ने अगर चाहा तो इस साल हम एक क्लासरूम में बैठकर एक पूरे एजुकेशनल माहौल में पढ़ेंगे, किस किस को ये एक नेमत लग रही है, और नेमत नहीं लगेगी तो कभी भी नहीं आएंगे। हम बहुत सारी ख्वाहिशें रखते हैं, लेकिन जब वो वक्त हमारे सामने आता है तो हम तावीलात में आते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि आपके बच्चों के स्कूलों के टाइम को जहन में रखें, क्योंकि आप सब जानते हैं अब सबके बच्चे हैं नहीं। और आप देखिए कि मैं आपको थोड़े से ऑल्टरनेट्स दिखाना चाहूंगी। अल्लाह ताला सूरत अल अनकबूत की आखिरी आयतों में कहते हैं कि वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं, मुजाहदा करते हैं, कोशिश करते हैं, हम उनको अपने रास्ते जरूर दिखाते हैं। आप मेरे घर आना चाहें तो क्या मैं नहीं आने दूंगी? मैं तो कहूंगी 100 दफा आए, खुशी से आए। आप मुझसे रास्ता पूछेंगे, मैं बताऊंगी ना आसान रास्ता, बताऊंगी कि मुश्किल। और इसके बरक्स मैं आपको बुलाती रहूं और आपका मिजाज ही ना बने, तो क्या मैं आपको अपना रास्ता बताऊंगी? मुझे पता है बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होगा, बट आप क्या सोचें, अभी इसी सीरीज में एक लेक्चर हुआ है 2-3 दिन पहले, हमारे असलाफ कहा करते थे कि हमें गर्मियों में रोजे रखने हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक शदीद गर्मी जब होती तो नफिल रोजे रखते, सर्दियों में नहीं रखते। लोगों ने पूछा क्यों, कहते मुझे मजा आता है गर्मियों के रोजे। इसी तरह एक सहाबी थे तो वो डेथ बेड पे थे, यानी उनको सूली पे चढ़ाया जाना था, समझे मौत का वक्त करीब था, तो जो ये काम करने वाला था उनके साथ उसने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ, क्या सोच रहे हो इस वक्त? तो कहने लगे कि गर्मियों के रोजों की लज्जत खत्म हो जाएगी अब मेरे से, मैं गर्मियों में रखना चाहता हूँ। क्यों? वो कहते थे कि हम अल्लाह के लिए जितनी बड़ी मुश्किल सहेंगे उतना हमारा नफ्स मरेगा। हमारे पास क्या कमी, अभी भी देखिए किस माहौल में हम बैठे हुए हैं, हमारे अमल इस काबिल? और जब हम मुसलमानों ने खुद अपनी किताब को सीखने सिखाने के लिए नहीं निकलना, तो दूसरों को कैसे सिखाना है? आपको पता है हम सबकी दुनिया में आने का मकसद क्या है? इंसान होने के नाते तो हम सबका मकसद है कि अल्लाह को राजी करें, अल्लाह की इबादत करें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हम सबको किस चीज की ख्वाहिश रखनी है, किस लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया कि हम अल्लाह की ये किताब दूसरों तक पहुंचाएं? आप और मैं नॉन मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, कभी किसी ने आपसे पूछा रह जाते हैं क्या कहती है तुम्हारी किताब? आप कहेंगे मैं फ्रेंच ही नहीं आती। ये बच्चियां जो बैठी हुई है, क्या आपका मेरा फर्ज नहीं है? या आप जो जॉब करते हैं लोग, और ये कैसे हो सकता है कि हमारा किसी भी फ्रेंच से वास्ता ही ना पड़े? आपके डॉक्टर्स, आपके घरों में मेल आती होगी, वर्कर्स, हैंडीमैन्स कितने हैं? क्या क्यामत के दिन ये हमारे खिलाफ ना बोलेंगे कि इन्होंने हमें दिया ही नहीं ये दर्द? और आज असल में मसला ये हो गया कि आज ये दर्द निकल गया उम्मत के दिल से, आज हमारे दिल में ये शौक और जौक नहीं रहा क्योंकि खुद नहीं पढ़ा। और दौरे कुरान तो एक इतना खूबसूरत सफर होता है, ऐसे लगता है जैसे आप ट्रेन में बैठे और शीशों में जल्दी से मंजर गुजर रहे हैं, और एक सीन है, दूसरी थोड़ी बहुत दूसरा सीन है, फिर तीसरा है, और आप तकरीबन 2-2.5 घंटे में एक पूरे पारे की वो झलकियां लेके घर जाते हैं। आपको घर जाके लगेगा पता नहीं मैं कितनी जगहों से फिर के आ गई हूँ। और आपके पास कोई भी कुरान पाक अपने घर में हो, आप वो भी यूज कर सकते हैं। पूरी इज्जत और पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस किताब को थामे। अगर हम मुसलमानों ने इस किताब से प्यार नहीं करना, अगर हमने इसके लिए वक्त नहीं देना, हमने इसके लिए कुर्बानी नहीं देनी, तो कौन देगा? अल्लाह ताला माफ करे, हमें तो कोई जंगे नहीं लड़नी पड़ती, हमें तो इस किताब के लिए पत्थरों पे नहीं चलाया जाता, हमने तो सिर्फ पढ़ना और सीखना और मजा आना है। लोग कहते हैं कुरान पढ़ेंगे बोझल, नींद आती है, मुश्किल होगी, कुछ लोगों का ये ख्याल है। मैं उस वक्त दिल से मुस्कुराती हूँ, मैं कहती हूँ ये जब आएंगी तो इनको पता चलेगा। क्या 3 घंटे की फिल्म देख के कभी मजा आता होगा आपको? 4 घंटे की शादी हॉल में खाने के इंतजार में बैठकर जो वापसी पे थके हुए आते हैं, आपको ऐसे लगेगा जैसे अभी पारा शुरू हुआ था और अभी उठ के चले गए। ये महफिल होती है फरिश्तों की के घेरे में, सकीनत उतरती है। तो इस काम में इंशाल्लाह हमने जाना है। अब एक और आखिरी बात, आज मैंने आपको सच्ची बताऊं दर्स नहीं दिया, मैंने ये सोच लिया कि आप सबको जो सिखाना है वो दौरे कुरान में सिखाना है। फिर आप कहेंगे हमें तो पहले ही बड़ा कुछ आ गया, हम तो पहले ही पूरा हफ्ता दर्स सुनते रहे, आप कुरान भी सीखे, हमने तो पहले ही मास्टर कर लिए हैं, बस अभी शौक लाए। दुआएं करें आज से, क्या करें? नंबर एक जाके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हम सब। फिर दूसरी बात है कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक, के अल्लाह मैं तेरी नेमतों के जवाल से बचती हूँ। फिर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे हम कि अल्लाह मुझे महरूम लोगों में ना करना। देखिए मक्का वालों ने बड़ी चाहत और तमन्नाओं से रसूल मांगा था, कुरान में कानु यस्तफ्तहूना, वो दुआएं मांगा करते थे कि वो नबी आए। बनी इसराइल की दुआएं थी, यहूद की ये दुआएं थी कि वो आखिरी नबी आए जिसका वादा हमारी किताबों में है। और जब नबी सल्लम आए तो उनका नसीब क्या हुआ? झुटलाना, मुखालफत। ये बहुत खुशबख्ती होती है कि अल्लाह की किताब किसी के दिल पे उतरे, तो दुआ करनी है। फिर इरादा, नियत। आपको क्या पता और मुझे भी नहीं पता कि हम में से किसने 1 महीना 4 दिन जिंदा रहना है, हो सकता है हम रमजान से पहले ही फौत हो जाए। आज की नियत कल का अजर देगी, कल का फायदा देगी। और याद रखिए एक बात, अल्लाह ने जिसकी बख्शिश का बहाना बनाना होता है ना, उससे आखिरी वक्त में नेकी करा लेता है। और ये कुरान इस तरीके से समझ के पढ़ना, हम सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, हम इससे प्यार भी करते हैं, बट इसको समझ के जो पढ़ना है ना, ये नेकियों के दरवाजे खोलता है। एक छोटी सी रिवायत सुनाती हूँ आपको, बड़ी प्यारी बात है। نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ چاہتے ہیں تو اس کو شہد بنا دیتے ہیں، اصل کے لفظ ہیں حدیث میں، اصل عین سے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کیسے بناتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، موت سے پہلے اس کے لیے نیک اعمال کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر اس کی روح قبض فرماتے ہیں۔ یہ صحیح روایت ہے، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی ایسی نیکی لے لیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ نیکیوں کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث ہے۔ اصلہو کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں میں اس کا ذکر خیر پھیلا دیتے ہیں اور اس کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے۔ اصل کس وقت کہتے ہیں عرب میں؟ کہ جب کھانے کو شہد سے میٹھا بنایا جائے۔ اب سوئیاں پکا لی، اینڈ پہ شہد ڈال دیا تو میٹھی ہو جائیں گی نا، چینی ڈالتے ہیں تو چیز میٹھی ہوتی ہے نا۔ تو نیک اعمال کو یہاں شہد کہا گیا ہے، کیونکہ نیک اعمال شہد کی طرح دوسروں کے اندر ذکر خیر سے معروف ہیں۔ ہم لوگوں کو خبریں دیتے ہیں نا، آم آ گئے ہیں، بڑے میٹھے ہیں، مٹھائی، لڈو، مٹھاس کا ذکر خیر ہوتا ہے نا، اس طرح اس بندے کے ذریعے سے نیکیاں پھیلنے لگتی ہیں۔ تو کس کو پتا ہے ابھی بھی ہوں گے کہ نہیں؟ اور سچی بات ہے، ایک بات سوچ کے ہم اپنے آپ کو یقین دلائیں، شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید ہدایت کی طرف یہ آخری کال ہو، پھر اس کے بعد ہمارے اعمال کا دروازہ بند کر دیا جائے، تو انشاءاللہ ہم نے اس کے لیے لینا ہے۔ پھر اگلی چیز جو مجھے آپ کو ضرور اس کے بعد کرنی چاہیے، کہ دیکھیے یہ ہم سب کی اجتماعی دعوت ہے نا، نہ کوئی نام، نہ مسلک، نہ گروہ۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں، آپ میں سے کوئی نئے لوگوں سوال ہو، کون سی فرق، کون سا مسلک، کون سی جماعت، تو میں چاہوں گی کہ میں اس کا جواب دوں آپ کو، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے پوچھیں یا آپ کسی کو جواب دیں۔ جو یہ قرآن پاک پڑھا جائے گا نا ادھر، اس کو کسی مسلک، کسی گروہ، جماعت کی نظر سے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ وجہ، آپ کے پاس اپنا قرآن ہوگا، آپ بے شک ادھر سے نہ لیں، آپ نہیں لیں کوئی بات نہیں، گھر میں جو قرآن آپ پڑھتے ہیں نا وہ لے کے آئیں گے، اور اس میں اردو بھی لکھی ہوگی۔ آپ مثال ہے کہ میں وہاں پڑھتی ہوں، تو کیا آپ میری غلطیاں نہیں نوٹ کریں گے؟ بلکہ آپ کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے میرا مسلک دیکھنے کا، میں کس گروہ سے ہوں، میں کس جماعت سے ہوں، میرے عقائد کیا، کیونکہ میں جب پڑھوں گی یا تو میں آپ کے ساتھ قرآن پڑھ رہی ہوں یا میں اسے بدل دوں گی۔ جہاں میں بدلوں آپ نوٹ کر لیں، اور اب بعد میں آ جائیں میرے پاس کہ جی ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے، آپ نے کیوں غلط کیا، میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ صرف ترجمہ ہوتا ہے، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے، گھر کے مرد پوچھ سکتے ہیں کس مسلک کی بنیاد پہ پڑھیں گے، کوئی مسلک نہیں۔ کون سی فقہ ہے، فقہ نہیں پڑھیں گے ہم اس میں، پورا یقین رکھیں کہ فقہ پڑھنے کے لیے تو حدیث پڑھی جاتی ہے، آئمہ کرام کے اقوال پڑھے جاتے ہیں۔ آج لوگ قرآن کے ترجمے سے اتنا بعض دفعہ ڈرنے لگ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، آپ کا قرآن عربی میں پہلے لکھا ہوا ہے، آپ اور میں اس کو اردو میں پڑھیں گے، بات سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ تعالی اس پہ آپ نے اپنے دل کو جمانا ہے۔ پھر اگلی چیز کیا کرنی ہے، کہ ہم سب نے چونکہ اس دعوت کو پھیلانا ہے نا، تو پھر ہم سب نے لوگوں کو بھی بلانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت تک جتنے بھی مراحل طے ہوئے ہیں، اتنے آرام سے تو نہیں ہوتے نا۔ آپ کو ہوتا ہے جگہ کا اہتمام کرنا، پلاننگز کرنا، کتنی میٹنگز، کتنا کچھ کرتے ہیں، پھر ہی کوئی کام ہوتا ہے۔ آپ ایک شادی 3 گھنٹے کا فنکشن رکھیں تو اس کے لیے کئی کئی مہینے لوگ پلاننگ کرتے ہیں نا، تو وہ تو ایک دن ہے، اور اس میں ماشاء اللہ آپ کو ایک مہینہ 30 دن پورے بلانا بٹھانا، اس کا انتظام ہوگا نا۔ آپ کا میرا کیا کام ہے اس میں کہ ہم نے دوسروں کو بلانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دال علی الخیری کفائلہ، جس نے دوسروں کو اس کام کی دعوت دی وہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ خود کرنے والا ہے۔ اب سوال اگلا یہ کہ کریں کیسے، کیسے ہم اس خیر میں حصہ ڈالیں؟ تو پہلی بات ہے کہ آپ نے اپنے لفظوں میں اپنی دوستوں، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو کیسے بتائیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم، تو کیا ہم لوگوں کو ایسے ہی بتاتے ہیں جب تک ہمارا دل نہ مطمئن ہو؟ آپ کے گھر میں کبھی دعوت ہوئی، کتنے دوست آتی ہیں؟ آپ میں سے جتنی سسٹرز یہاں بیٹھی ہیں، ہر سسٹر 20 لوگوں کو جانتی ہے، اور اس کے کہنے پہ 20 لوگ آتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہال بھی چھوٹا پڑ جائے گا، بات سمجھ رہے؟ یہ فلائر تو صرف ایک انفارمیشن ہوتے ہیں، یہ انویٹیشن نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کو ایسے ہی جیسے شادی کا کارڈ ہم دیتے ہیں نا، تاکہ لوگ عین وقت پہ بھٹکے نا، تو یہ انفارمیشن ہے۔ لیکن جس چیز نے لوگوں کو بلانا ہے نا، وہ آپ خود ہیں، آپ نے انوائٹ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، کسی کو انوائٹ کیسے کرتے ہیں؟ فون کرتے ہیں، السلام علیکم، ادھر ایک لنچ ہے، 11 بجے ہے، اور بھی عورتیں آئیں گی، آنے کو دل کیا تو آ جانا، میں آؤں گی۔ آپ میں سے کوئی کسی کو ایسے لنچ پہ بلاتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث صد افتخار ہوگی۔ اردو کا ترجمہ بھی نہ پڑھنا آئے، لیکن کرتے ہیں نا۔ तो ये देखिए, ये फ्लायर है, ये एक तो आपको ये फ्लायर बाहर मिलेगा, ये तो आपका क्विक सदका जारी है, क्विक जिसको आप कहते हैं कि आज बीज डालो कल काट लो। अब जितने फ्लायर इधर आज हमारे पास ये रखे हुए हैं, अगर आप किसी जगह चिपका दें इसकी, सब आप तस्वीर खींच लें अपने अपने फोनों में, अगर नहीं आपके पास आया हुआ, अपनी दोस्तों को घर जाके फोन करें कि चलें कल आए हम बात करते हैं, और इंशाल्लाह ये फ्लायर आपके हाथ से गया। क्या बड़ी बात है कि कल के दर्स में कोई एक सिस्टर सिर्फ 1.25 घंटे, देखिए आज भी मेरा हाल मुश्किल, मैंने आपसे 1 घंटा बात की है। अब इस टाइम में आपके दोस्त सिर्फ आपके कहने पर 1 घंटा दर्स सुन गए और आगे से वो दौरे कुरान से जुड़ गए, किसको इज्जत जाएगा? आपको जाएगा। तो इस नियत से जाना है, हम इतनी सी कोशिश करके वो जिसको हमारी जुबान में क्या कहते हैं, उंगली कटा के शहीदों में नाम, ना हमारी जिंदगी में बदर है, ना उहद है, ना खंदक है, ना तबूक है। अल्लाह के नबी ने इस कुरान के पैगाम को फैलाने के लिए मक्का से ताइफ और ताइफ से मदीना के सफर किए, तबूक तक गए, असल में तो ये पैगाम कुरान का ही था। तो मैं और आप अगर इतने खूबसूरत माहौल में और इतनी प्यारी किताब पढ़ लेते हैं और हमारी वजह से कोई पढ़ लेता है, तो दुआएं कितनी मिलती हैं ये मैं आपको आज ही बता दूं। यानी आप जिसकी हिदायत का जरिया बनते हैं ना, वो आपको सारी जिंदगी दुआएं देता है, दिन रात साथियों से मिलना जुलना रहता है। वो कहते हैं वो पहली सिस्टर जिन्होंने मुझे जबरदस्ती बुलाया था, और मैं जाती कोई नहीं थी, रोज बहाना कर देती थी, काम करना है, घर है, हमारे उजर भी होते हैं, बच्चे घर में है, बच्चों के लिए सीखना आपने। देखिए ये जो टाइम है, कोशिश की गई है कि बच्चों वाली माएं भी उसके अंदर बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आए, कुछ तो होगा। एक चॉइस से सुबह कर दें तो आप सो नहीं सकेंगे, रात छोटी है, जार के बाद कर दें बच्चे घर आ जाएंगे, फिर क्या करें, दिन तो बहुत लंबा है ना। वो टाइम जिसमें प्रेफरेबली आप निस्बतन जहनी तौर पर आसान होंगे, आने जाने का तरीका कीजिए, राइड का मिलके करें। अभी जैसे सिस्टर ने हाथ खड़ा किया है, आप में जितनी सिस्टर यहाँ मौजूद है, बाहर आप लोग एक इसका राइड इंचार्ज भी होता है, हम अपनी तरफ से आपको एक साथ नाम फोन नंबर दे सकते हैं जिसको पहुंचने में मदद चाहिए। दो चीजें होती हैं, आप कहते हैं कि मेरी गाड़ी खाली है, जैसे आप हैं तो आप अपना नाम लिखा के जाए, किधर से आएंगी, कहाँ आएंगी, लोग आपके साथ आ जाए, और जिनको राइड चाहिए उनको मिला देंगे, बड़ी बात नहीं है। वही बात है कि जहां चाह होती है अल्लाह रब बनाता है। तो मैं आप सबको बहुत अच्छी दुआ देके जाऊंगी, क्योंकि आज मेरा हाल है, मैंने अपनी जुबान से पहले ही दफा आप लोगों को इनवाइट किया। अब ये आगे अल्लाह ताला आपसे दूसरों को खैर दिलवाए, कोई सवाल, कोई बात, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी। आप प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम।
मैं 2 साल से दौरा कुरान सुन रही थी, तो मेरी यही ख्वाहिश होती थी जब ये दौरा कुरान कराती थी सदा जी, तो मैं कहती थी कितने खुश नसीब लोग हैं जिनके सामने ही बैठ के करा रहे हैं। मैं कहती थी काश ये फ्रांस में आए और हम भी उन लोगों में हों कि हम सामने बैठ के सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने जब सुना कि दौरा जी फ्रांस में आ रही हैं और दौरा कुरान करा रही हैं, तो मैं दिल ही दिल में कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी भी दुआ कबूल की है, तो बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप आई हैं और हमें भी अल्लाह ताला ने मौका दिया है। तो अब यही दुआ है कि हम लोग जो हैं रोज आके ऐसे आमने सामने बैठ के सुने, और बहुत अच्छा लगता है। पहले ये जो दुआ आज हमने ये सुनी है, रब्बाना ज़िदना इल्मा और अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन, पहले हमें ये दुआ भी नहीं आती थी, इसकी समझ भी नहीं थी। तो जब से हम दोहरा कुरान सुना, दुआएं सुनी, तो आज ये दुआ सुनने में बहुत मजा आ रहा था। ये जो दुआ सामने अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने ये समझाया है तो उस्ताद के साथ समझ आई है ना मुझे। आज घर में पढ़ती थी तो मुझे समझ नहीं आती थी, मैं कहती थी इसका क्या मतलब है, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा हूँ, इसका क्या मतलब है, मैं अपने दिल में सवाल करके चुप कर जाती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये भी जो ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की है कि इसका उस्ताद के साथ मुझे समझ आ गई है कि इसका मतलब क्या है। तो आज के बाद मैं इंशाल्लाह इस दुआ को पढ़ूंगी, पहले मुझे मुश्किल लगती थी। तो ये है ना कि उस्ताद के साथ जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसका कुछ मजा ही और है, उसकी कुछ समझ ही और है। जो हम खुद पढ़ते हैं उसकी हमें समझ नहीं, हम कहते हैं हम खुद तर्जमा पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक उस्ताद साथ ना हो समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ी खुशी की बात है कि हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है। तो रमजान हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमें फिर जीते जी एक दफा फिर मौका दिया है, तो हमें चाहिए कि जो मौका हम जाया ना करें। तो हमें जरूर जो है ये सुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जरूर टाइम दें कुरान को और कुरान को समझ के पढ़ें, तो अल्लाह ताला आपको जिदा दे, अल्लाह ताला इन सिस्टर को अल्लाह पाक जिदा दे जिन्होंने, मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे समझ आई है। अब मैं जब भी कुरान सुनती हूँ तो मुझे समझ आती है, दिल नरम हो गया। अब सब्र करने का, शुक्र करने का समझ आई है कि सब्र करना है, शुक्र करना है। नमाज की पाबंदी कम अज कम हमें पता चल गया, मुझे पता चल गया। काम छोड़ देती हूँ, नमाज शुरू कर देती हूँ, मैं कहती हूँ यही काम आना है और कुछ नहीं काम आना। तो अल्लाह ताला आपको जिदा दे, आप आई हैं, बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें जो मौका दिया है, हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, हम सारे आके आपके सामने बैठ के इसी तरह सुनें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सब के जज्बों को भरे, और दूसरों को रग़बत दिलाना भी सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नबी को भी यही कहा था। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाब रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حسني وذهاب همي وغمي. يا الله اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، يا الله اس قرآن کو ہماری تنہائیوں کا ساتھی بنا دے، يا الله ہمارے غموں کو لے جانے والا بنا دے. ہمیں اس کتاب کی قربت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس کتاب سے دوستی عطا فرما. یا اللہ ہم جتنے شوق سے اس کو پڑھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے بھی لگے. اور یا اللہ یہ دور قرآن کا سفر اس کا پہلا مرحلہ ہوگا، ہم اتنے مختصر سے وقت میں تیری اس پوری کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یا اللہ ہمیں اس سے محروم نہ رکھنا. یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں فرما، یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے لیے مشکل ہے، ہماری بہت ساری ذمہ داری ہیں، پر یا اللہ تو ہی ہے جو ہماری مدد کرے گا اور تو ہمارے کاموں کو آسان کرے گا. یا اللہ تو ہمیں اپنے کاموں میں لگا اور ہمارے کام تو آسانیوں کے ساتھ کروا دے. ہماری پیاری بہنوں نے جو بھی یہاں سنا، جو بھی بیٹھے اس میں، ان کو کوئی تکلیف ہوئی تو یا اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما. یا اللہ ان کو ایک ایک قدم کا اجر عطا فرما. یا اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ان کے شوہروں کو ان کے دین اور دنیا کے ساتھی بنا. یا اللہ ہم سب کو کنبے برادریوں قبیلوں کے ساتھ جنتوں میں داخل کرنا. یا اللہ ہمیں کسی کو وہاں محرومی نہ دینا. یا اللہ ہمیں کسی رشتے کی وہاں جدائی نہ دینا. یا اللہ ہمیں کسی دوست کسی ساتھی کے بغیر جنت میں نہ لے کے جانا. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے بچانا. یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی جہنم میں گرا دیا گیا تو باہو برباد ہو جائے گا. یا اللہ ہمیں بچا دے. یا اللہ اس جگہ پہ بھی اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو ان کی مدد فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی خاص حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مردوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بھائیوں کو، شوہروں کو یا اللہ دین کا شوق لگا دے. یا اللہ ہم دین کے لیے بھاگ بھاگ کے نکلنے والے بن جائیں. یا اللہ ہمیں پورے پورے گھرانوں کو ابراہیم کے گھرانے کی طرح بنا دے. یا اللہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی سب تیرے دین کو پھیلانے والے بن جائیں. یا اللہ دلوں کی نفرتیں دور فرما. یا اللہ بغض اور کینے ختم کر دے. یا اللہ مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں سے پیار کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا. یا اللہ آپ نے اتنی مشکلیں اپنی ذات پہ سہ کر اس کام کو نہیں چھوڑا. یا اللہ ہمیں بھی اس کام کو زندگی کے آخری دن تک کرنے والا بنا. یا اللہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یا اللہ کل ہم آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پی سکیں. یا اللہ ہمیں آپ کی سفارش نصیب فرما. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ قیامت کے دن ہم اپنے نبی کے سامنے کامیاب اور سرخرو ہو کر نظر آئیں. یا اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروانا. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا. اعمال نہیں ہے تو اپنی رحمت یا اللہ ہمیں جنت کے قابل کر دے. یا اللہ ابھی تک کی زندگی ہم نے گزار دی، اب باقی زندگی کے جو دن ہیں وہ آسن درجے پہ ہمیں دین کو ساتھ لے کر کامیابیاں عطا کرنے والے بنا دے. اور یا اللہ ہم جن دنیا کے حصوں میں بھی ہیں یا اللہ ہمیں وہاں دین اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمارے ذریعے سے ہمارے ساتھیوں کو ہمارے ہمسایوں کو سب کو یا اللہ تیری معرفت مل جائے. یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اس افسوس اور حسرت کے ساتھ نہ لے جانا کہ ہم اپنی زندگی سے اور فائدہ اٹھا سکتے تھے اور ہم نے نہیں اٹھایا. اور یا اللہ جو پاکستان میں ہیں پیچھے جس کے بھی گھروں میں ملکوں میں ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمانا, فتنوں اور آزمائشوں سے بچانا, بیماریوں اور تکلیفوں سے بچانا, چوریوں چکاریوں سے بچانا. اور یا اللہ ہمیں علم کا شوق اور دے دے. رب زدنی علما, رب زدنی علما. یا اللہ مال عزت دولت سب دیا, یا اللہ ہمیں علم دینے والا بنا, ہمیں علم سے محبت کرنے والا بنا دے. اور یا اللہ یہ ساتھی جو دور اور نزدیک سے آئے ہیں سب کو اجر عطا فرما, جو چل کے آئے ان کو چلنے کا اجر دے, اور جو گاڑیوں میں آئے یا اللہ ان کا پیٹرول بھی جلا یا اللہ وہ بھی ان کے نام اعمال میں شامل کر دے. اور ہمارے جو ساتھی اس وقت بھی گھر سے سن رہے ہیں اور جو بعد میں بھی سنیں گے یا اللہ ان سب کو ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما. یا اللہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں, یا اللہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہونے والے بنے. اور یا اللہ دنیا سے کفر اور شرک اور بے حیائی کا خاتمہ کرنے والے بن جائیں. ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما, جو دین اور ایمان کی حالت میں تیرے پاس آ گیا یا اللہ سب کی بخشش فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر واسن الجزا.